सच्चिदानन्द रूपम् लसत् कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वर यशोदाभियोलोकलाघवमानम् परां दृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलोकलाघवमानम् परां दृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं पराम्भुजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखककण्ठ शितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् घोषं निमज्जन्तम् तदीयसि तग्नेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे परं देव मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह इदं देव पूर्णाथ गोपाल बालम् सदामि मनस्य विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय वृतं कुन्तलय स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् मुहुशुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो देव कृपादृष्टिवृष्टाति दीनं वतानि ग्रहानिश मामज्ञ मेऽध्यक्षिदृश्य ಆತ್ಮಜೋಬದ್ಧಮೂರ್ತೈವ ಯದ್ವತ್ ತ್ವಯಾ ಮೋಚಿತೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾಜೋ ಕೃತೌ ಚ. ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಕಾಮೆ ಪ್ರಯಚ್ಛ ನ ಮೋಕ್ಷ ಗ್ರಹೋ ಮೇ ಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತು ದಾಮ್ನೆ ಸ್ಫುರ ದೀಪ್ತಿ ಧಾಮ್ನೆ ಪದಿಯುದರಾಯಾಥ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾಮ್ನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತು ನಮೋ ರಾಧಿಕಾಯ ತ್ವದೀಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಂತ ಲೀಲಾಯ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ನಮೋ ರಾಧಿಕಾಯ ತ್ವದೀಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಂತ ಲೀಲಾಯ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ನಮೋ ರಾಧಿಕಾಯ ತ್ವದೀಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಂತ ಲೀಲಾಯ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ನಮಃಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಗಜಮಾನಂ. ನಮಃಶ್ವರಂ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ ರಾಧೇ ಜಯ ರಾಧಾ ಗೋಕುಲಾನಂದ ರಾಧಾ ಗೋಕುಲಾನಂದ ರಾಧೇ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ.
ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೋತೃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಿವಿರಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶಿಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೀ प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो कल हम लोग गोकुल में थे जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार माता यशोदा ने क्रोध में आकर कृष्ण को बांध दिया। बड़ी सुंदर लीला भगवान ने की, किस प्रकार माता यशोदा दही मथ रही थी, उनके रूप का सुंदर रूप का वर्णन, किस प्रकार चूड़ियों का क्या भाव था, कुंडलों का क्या भाव था, फूलों का क्या भाव था, और फिर कैसे कृष्ण आए और उन्होंने उस मथनी को पकड़ लिया और फिर माता उन्हें दूध पिलाने लगी। फिर जो चूल्हे पर दूध रखा था उसको बचाने के लिए उनको छोड़कर वो चली गईं, जिसके कारण कृष्ण बड़े क्रोधित हो गए। सोचने लगे कि क्या इस घर में मेरा कोई मूल्य है कि नहीं, कोई वैल्यू है कि नहीं, केवल दूध के लिए मुझे त्याग कर चली गई। तो इस क्रोधवश सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि क्रोधवश आंखों में नकली आंसू भरकर, झूठे आंसू भरकर, और वो दिखावा करने लगे कि वो रो रहे हैं। और फिर उन्होंने मटकी फोड़ दी, दही गिरा दिया, दही पर चलकर चले गए, उखल उल्टा किया और फिर माखन खाने लगे। और फिर जब उन्होंने देखा बड़े ध्यान से कि यशोदा माता आ रही हैं, तब फिर वहाँ से भागने लगे और पूरे ब्रज में उन्होंने हंगामा कर दिया। यशोदा माता बेचारी भागती रहीं और अंत में उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उनकी इच्छा हुई कि इन्हें बांध देना चाहिए। तो क्यों बांधना चाहिए, इसके भी कई कारण हम लोगों ने कल सुने। और फिर इस तरह से यशोदा माता ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। सारी रस्सियाँ लाई गईं, गायों को बांधने वाली ब्रज की जितनी रस्सियाँ गोपियाँ ला ला कर दे रही थीं। वैसे वो कह भी रही थीं कि तुम्हारे लाला के कपाट में बंधना लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी यशोदा ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और फिर अंत में उन्होंने कृष्ण को बांध दिया। तो आचार्य टीका करते हैं कि भगवान ये मुक्ति प्रदाता हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, स्वयं शिव जी कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सभी लोगों में, सभी लोगों के लिए मुक्ति प्रदाता, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल वही एक हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। और ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान आज स्वयं बंध गए हैं। बंध ही नहीं गए हैं, बंधने के बाद रो रहे हैं क्योंकि कोई उन्हें खोल नहीं पा रहा है। अब सोचिए कितनी सारी गोपियां खड़ी थी, कितने लोग खड़े थे, किसी ने खोला क्यों नहीं? अरे माँ बांध कर चली गई है, माँ ने बांध दिया तो खोल देना चाहिए, बच्चा है छोटा सा। तो खोला इसलिए नहीं, आचार्य समझाते हैं जब कृष्ण स्वयं नहीं खोल पा रहे हैं तो कोई और क्या खोलेगा। मुक्ति प्रदाता स्वयं, वो जब अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, इतना गाढ़ा बंधन है यशोदा माता का, तो फिर कैसे कोई उनको खोल सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है कि वो इनको खोल दे? इसीलिए किसी ने खोला नहीं, किसी ने स्पर्श नहीं किया, क्योंकि यशोदा ने बांधा था। यशोदा का बड़ा गुणगान सुखदेव गोस्वामी ने किया कि क्या महत्व, क्या स्थिति यशोदा को मिली, जो बड़े बड़े देवताओं को, ब्रह्मा को, शिव को, स्वयं लक्ष्मी देवी को नहीं मिली। लक्ष्मी देवी जो कृष्ण के वक्षस्थल पर निवास करती हैं, भगवान के वक्षस्थल पर वो निवास करती हैं, तो वो लक्ष्मी देवी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य यशोदा को मिला कृष्ण को बांधने का। तो कृष्ण बंध गए, अपने ऐश्वर्य को उन्होंने प्रदर्शित किया, और फिर जब काफी समय बंधे रहे, ऐसा वर्णन है कि यशोदा माता वहीं खड़ी हुई थी, और जब तक वो खड़ी रही तब तक कृष्ण ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते थे। डर था कि अभी एक बार बांध दिया है और अगर फिर से अगर खोलने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत कुछ हिला डुला, तो और मार पड़ेगी। अभी अभी तो छड़ी फेंक दी है माता ने, लेकिन अगर मैंने और ज़्यादा शैतानी की, बदमाशी की, तो फिर बहुत छड़ी पड़ेगी, तो इसलिए चुप रहे। फिर थोड़े समय बाद यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तो जब यशोदा अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गई, तब भगवान ने, कृष्ण ने अपने आंगन में उगे हुए दो वृक्षों की ओर देखा, यमलार्जुन वृक्ष, और भगवान ने सोचा कि अब इनका उद्धार करना चाहिए। तो देखिए, हर स्थिति में कृष्ण भगवान है, स्वयं बंधे हैं, लेकिन बंधकर भी दूसरे का उद्धार करने का सोच रहे हैं। क्यों सोचा भगवान ने? क्योंकि भगवान ने सोचा कि अब माँ अपने स्वाभाविक कार्यों में लग गई है, माँ का कार्य है घर के कार्य करना, तो मुझे भी अपने स्वाभाविक कार्यों में लग जाना चाहिए। माँ का कार्य है घर के कार्य करना और मेरा कार्य है जीवों का उद्धार करना, तो इसलिए अब मुझे अपने कार्य करना चाहिए। आचार्य ये भी समझाते हैं कि अर्जुन वृक्षों को देखकर ही भगवान ने क्यों उनका उद्धार करने की बात सोची। आज कृष्ण सोच रहे थे कि आगे चलकर मेरा एक परम मित्र अर्जुन होने वाला है कुरु वंश में। भगवान के लिए भूतकाल या भविष्यकाल, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक समान है, वर्तमान भविष्य। तो भगवान ने कहा कि मेरा मित्र है अर्जुन, और यहां ये दोनों भी अर्जुन वृक्ष हैं, तो इस नाते से कम इसका उद्धार करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो स्थिति थी इन अर्जुन वृक्षों की, ये स्थिति अपार्थ कहलाती है। अपार्थ का अर्थ होता है अप अर्थ, अप अर्थ मतलब जिनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, अप अर्थ, अपार्थ। तो वे सोचने लगे कि मुझे अब ये अपार्थ से इसको पार्थ बनाना चाहिए। पार्थ ये अर्जुन का भी नाम है, तो पार्थ या अर्जुन अपार्थ कैसे हो सकता है? अपार्थ का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जो प्रथा से संबंधित नहीं है। अर्जुन को पार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रथा से संबंधित है, कुंती महारानी का पुत्र है। और अपार्थ का अर्थ है कि जो कुंती से संबंधित नहीं है, प्रथा से संबंधित नहीं है। तो कृष्ण ने सोचा कि ऐसे अर्जुन को, ये भी अर्जुन है, नाम तो है कम से कम अर्जुन, तो मैं अर्जुन को कैसे अपार्थ रहने दूं, अप अर्थ, जिसके जीवन का कोई अर्थ ही ना हो। तो इसीलिए मुझे इसको पार्थ बनाना चाहिए, अर्थात इसके जीवन को एक अर्थ देना चाहिए, एक उद्देश्य देना चाहिए। तो इस कारण से भी भगवान ने यह सोचा कि मैं अब इन यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करूंगा। दरअसल जिस समय वो वृक्षों को देख रहे थे तो उन्हें नारद मुनि का स्मरण आ रहा था। वो सोचने लगे कि वैसे तो ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से मेरा क्या लेना देना, ये भोगी व्यक्ति हैं, लेकिन केवल मेरे भक्त नारद ने इनके ऊपर कृपा की है, इसलिए उनके वचनों को पूरा करने के लिए, देखिए भगवान जो कार्य करते हैं, भले ही उन्हें ये प्रिय ना हो, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी इन लोगों को मुक्त करने की, इनका उद्धार करने के लिए, ऐसा कौन सा काम किया था इन दोनों ने, लेकिन केवल सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान कहते हैं कि क्यों ये कार्य कर रहे हैं, निज भृत्य, अपने जो भक्त हैं, निज भृत्य दास हैं, भक्त हैं, तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उन्होंने जो भी शब्द कहे। दरअसल जब नरसिंह देव के रूप में आए थे भगवान तो भी यही था, उनका उद्देश्य यही था, और अब भी भगवान यही सोच रहे थे। अब भी भगवान यही सोच रहे थे कि अपने भक्त की वचनों को मुझे पूरा करना है। नारद मुनि ने वचन दिया है कि इन दोनों का उद्धार होगा, तो इसलिए अब मुझे इनका उद्धार करना चाहिए। तो ये दोनों जो वृक्ष खड़े थे, इन दोनों अपने पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर ये कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, या कहना चाहिए सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि देवताओं को धन देते हैं। अब देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे बैंक में कैशियर होता है कि साइन कोई और करते हैं, केवल उसका काम देना होता है, ऐसा नहीं है, और वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ का जो कैशियर है वो उस धन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो मालिक का धन होता है। लेकिन कुबेर वो ऐसे कोषाध्यक्ष नहीं है, वो धन देते हैं दूसरों को, जैसे बालाजी को भी उन्होंने लोन दिया है, उधार दिया है, अभी तक बालाजी चुका रहे हैं उसको, तो वो देते हैं दूसरों को, तो बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। तो इनके पुत्र, और इतना ही नहीं, बड़े सुंदर थे दोनों, बहुत सुंदर शरीर, बहुत सारा धन। और फिर ऐसे में और एक इनका गुण हुआ कि ये शिवजी के पार्षद हुए, शिवजी ने इन्हें अपना निज पार्षद बनाया। तो इस कारण से थोड़ा सा अहंकार, अभिमान इनके अंदर आ गया, और किसी भी व्यक्ति में आना स्वाभाविक है। हम लोग इस जगत में भी देखते हैं कि अगर कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, बहुत रूपवान व्यक्ति हो, या बहुत ही प्रतिष्ठा जिसके पास हो, किसी बड़े व्यक्ति से संबंधित हो, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। जब तक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है, उसके लड़के को कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, उसकी बात तो दूर, उससे ज्यादा बिजी उसका लड़का हो जाता है, इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी तरह ये तीनों चीजें इनमें थी, बड़े सुंदर थे, धनवान थे, और साथ ही साथ शिवजी के पार्षद। तो इस अहंकार के कारण ये बड़े ही पापपूर्ण कार्य किया करते, अर्थात स्त्रियों के संग करना, मदिरा पान करना, इधर उधर घूमना, ये सारा कृत्य किया करते थे। आगे चलकर नारद मुनि का जब प्रवचन आएगा, नारद मुनि के निर्देश आएंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो इस तरह से इन तीनों चीजों के कारण इन दोनों में बड़ा ही अहंकार अभिमान आ गया। और इस दंभ में एक समय इस अहंकार के कारण काफी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए कैलाश जा पहुंचे, कैलाश के एक उपवन में जा पहुंचे। और वहां पर मंदाकिनी के तट पर, मंदाकिनी अर्थात गंगा देवी, स्वर्ग में इनको मंदाकिनी कहते हैं, यहां पर भागीरथी कहते हैं, नीचे के लोकों में भोगवती कहते हैं, वही गंगा है। तो मंदाकिनी के तट पर कैलाश के उपवन में ये कुछ स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। तो आचार्य इस पर टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं कि देखिए कितना इनका अहंकार बढ़ गया। एक तो मंदाकिनी का तट, गंगा, जो पावन करने वाली हैं, शुद्ध शुद्ध हैं, जिनका बड़ा महत्व है, और ऊपर से कैलाश का उपवन, कैलाश पर्वत जहां पर स्वयं शिव जी रहते हैं। तो कैलाश का उपवन, मंदाकिनी का तट, और ऐसे में वो नदी में प्रवेश कर गए और फिर नग्न अवस्था में वहां पर क्रीड़ा करने लगे, स्त्रियां भी नग्न और ये दोनों भी नग्न। दरअसल आचार्य समझाते हैं बड़े सुंदर टीका से कि जो काम जहां के लिए उचित है वहीं करना चाहिए। हम हर कार्य सार्वजनिक तौर से नहीं कर सकते। और साथ ही साथ शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कभी भी नदी में या जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान हो जाता है। तो यहां पर कितने सारे अपराध एक साथ हो गए, मंदाकिनी का तट, कैलाश का उपवन, मंदाकिनी में प्रवेश, वो भी नग्न अवस्था में, और साथ में स्त्रियों का संग, और ऊपर से मदिरा पिए हुए। तो इन सब के कारण वहां पर वो क्रीड़ा करते रहे। तो कुछ समय बाद ऐसे स्थान पर अचानक वहां पर नारद मुनि आ गए। अब नारद मुनि जैसे ही वहां पर, नारद मुनि घूमते रहते हैं अलग अलग स्थानों पर, जहां भी उन्हें अवसर मिलता है जीव का उद्धार करने के लिए वो वहां पहुंच जाते हैं। तो नारद मुनि आए और जैसे ही नारद मुनि को स्त्रियों ने देखा वो सब घबरा गई, क्योंकि वो नग्न अवस्था में थी तो इधर उधर भागने लगी, जो जहां अपने आप को छुपा सकी, जो कपड़ा मिला उठा सकी, वो भागने लगी इधर उधर। क्यों भागने लगी? एक तो लज्जा और दूसरा भय। कैसा भय था? कि ये ऋषि हैं, ये साधु हैं, ये श्राप दे देंगे। तो पहले लोग डरा करते थे साधुओं से। हम लोग देखते हैं इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं, दुर्वासा मुनि आए तो लोग घबरा जाते हैं, दूसरे अन्य कोई ऋषि मुनि आए तो लोग घबरा जाते हैं, कोई साधु संत, विश्वामित्र जब दशरथ महाराज के दरवाजे पर आए थे और दशरथ महाराज ने केवल सुना तो वो मूर्छित हो गए थे कि अरे विश्वामित्र मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं। तो साधुओं से डरा करते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि साधुओं में शक्ति थी। आजकल के साधुओं की तरह नहीं थे कि भगवे वस्त्र पहने हैं और बाकी सारे गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए उनमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन पहले के साधुओं में शक्ति हुआ करती थी, तपस्या का बल होता था जिसके द्वारा वो किसी को भी श्राप दे सकते थे और वो श्राप सत्य होता था। आजकल तो अगर कोई साधु श्राप दे भी दे तो वो सत्य नहीं होगा। वैसे भी साधुओं को देना नहीं चाहिए, लेकिन पहले लोग घबराते थे। तो इन दो कारणों से जो स्त्रियां थी वो इधर उधर भाग गई, सबने अपने अपने तन को ढक लिया, कई कहीं छुप गई। लेकिन ये दोनों, ये मदांध, मदांध यानी मद में अंधे, ये दोनों वहीं पर खड़े रहे, हिले नहीं, और तो और अपने तन को भी ढकने का प्रयास नहीं किया। इनके मन में क्या आया? क्योंकि इतने मदिरा पी चुके थे, इतने मग्न थे, तो इनके मन में आया कि अरे इस साधु को देखो, इसको भी अभी यहीं पर आना था, और कोई स्थान नहीं मिला जाने के लिए, यहां पर क्यों आया है? ऐसे मन में उन्होंने विचार किया, इसको आने की क्या आवश्यकता है यहां पर। अरे हम यहां पर थोड़ा बहुत भोग कर रहे हैं, थोड़ा आनंद ले रहे हैं, और ये साधु ऐसे हो गए हैं कि अब हमें आनंद भी नहीं लेने देते हैं कहीं पर, तो हम नहीं हटेंगे यहां से, हम कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करता है। तो ऐसे ही नंग धड़ंग खड़े रहे वहां पर। तो नारद मुनि ने देखा कि कितना अभिमान इन लोगों को है, किस तरह से वो ये खड़े हैं। उन्होंने साधु तो दूर की बात है, ये तो साधु ऋषि आए थे, देव ऋषि आए थे, अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति आ जाए तो कम से कम इतना तो व्यक्ति को करना चाहिए कि अपने शरीर को ढक लेना चाहिए या उसको कुछ उसका आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया। तो नारद मुनि सोचने लगे कि इनके अंदर बड़ा अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। तो उस समय नारद मुनि बड़ा सुंदर प्रवचन करते हैं या निर्देश देते हैं, इतने सुंदर उपदेश उनके हैं कि किस तरह से व्यक्ति को यह अभिमान हो जाता है, कैसे ये अभिमान हृदय में आता है, ये बड़े सुंदर वर्णन भागवत में किया गया है। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता से भी अधिक बुद्धि को मोहित करने वाला है। अर्थात वो कहते हैं कि धन के प्रति जो आकर्षण है वो बुद्धि को मोहित करता है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। तो नारद मुनि यहां बता रहे हैं कि जब किसी के पास बहुत सारा धन आ जाता है, जो बहुत कष्ट करके वो कमाता है व्यक्ति, तो उस धन के द्वारा स्त्रियां, मदिरा, द्यूत और साथ ही साथ पशु वध, अगले श्लोक में बताते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं को निर्दयतापूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे पर्यटन का आनंद लेने के लिए भी पशुओं को मारते रहते हैं। तो देखिए यहां पर इन चार चीजों का वर्णन नारद मुनि कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये धन ऐश्वर्य आता है वो स्वाभाविक है कि इन चीजों में लग जाता है, क्योंकि अगर मदिरा पीनी है तो धन चाहिए, स्त्रियों को आकर्षण करना है तो धन चाहिए इस जगत में, या फिर जुआ खेलना है तो खेलेंगे किससे, धन तो होना चाहिए। और फिर ऐसे धनाढ्य लोग अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण पशु हत्या में भी लग जाते हैं। ये धन वैसे देखा जाए तो हमारी चिंताओं का कारण है। चाणक्य पंडित बड़ा सुंदर वर्णन धन के बारे में करते हैं कि धन क्या है, धन कैसे आता है। तो बताते हैं कि धन से ही सारी चिंताएं आती हैं। वो कहते हैं, अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जितम च रक्षणे। चिंता कैसे आती है, पहला वो बताते हैं, अर्थानाम अर्जने दुखम। अर्जने अर्थात उसको जब अर्जन करना होता है उसके लिए दुख लेना पड़ता है, चिंता लेनी पड़ती है ना, ऐसे नहीं आ जाता है धन। धन कमाना है तो चिंता लेनी है, तो इसलिए वो कहते हैं अर्थानाम अर्जने दुखम। और फिर समझिए, आपने धन कमा लिया, अर्जितम च रक्षणे, फिर उसका रक्षण करने की चिंता। धन तो आ गया, ठीक है, बड़ी मेहनत की, बड़ा कष्ट लिया, बड़ी चिंताएं सही, फिर धन आ गया, अब धन का रक्षण करने की चिंता। क्यों रक्षण करने की चिंता, सरकार ले जाए, चोर लुटेरे ले जाए, कहां रखें छुपाकर, बिस्तर के नीचे डालें या बाथरूम के अंदर छुपाएं या कहां छुपाएं। लोग अलग अलग, बहुत जिनके पास धन होता है वो लोग ऐसे सब विचार करते हैं कहां कहां छुपाना चाहिए। इसीलिए भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लोग ज्यादा से ज्यादा सीए बनना चाहते हैं। लोग सीए के पास क्यों जाते हैं, एक ही कार्य के लिए, हम धन कैसे बचा सकते हैं अपना, सरकार को नहीं देना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, नहीं तो चोरों से बचाने की चिंता। तो देखिए, चिंता किससे आती है? धन से। पहले तो धन अर्जन करने के लिए चिंता और फिर उसका रक्षण। अये दुखम व्यय दुखम, अगर उसको रख रहे हैं तो दुख है, व्यय कर रहे हैं तो दुख है, ठीक है कि नहीं? जब खर्च कर दे तो भी दुख होता है, हाय चला गया, आम 100 रुपए के थे 90 रुपए के मिले होते तो अच्छा था, 10 रुपए एक्स्ट्रा चले गए। हाँ, तो व्यय दुखम, तो धिक अर्थ कष्ट संचय, तो ऐसा धिक्कार है, धिक्कार है किस पर? ये हम धन संचय नहीं कर रहे हैं, क्या संचय कर रहे हैं? कष्ट संचय, कष्टों का संचय कर रहे हैं। तो ऐसा धिक्कार है ऐसे धन अर्जन पर। तो देखिए, धन कितनी चिंताएं लाता है, पहले तो कमाने की चिंता, कमा ले तो रक्षण की चिंता, रक्षण कर लिया तो व्यय करें तो उसमें दुख, और फिर ये सारे दुखों को संचय करने के लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं। तो सबसे अगर हम रक्षण करना चाहें तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में क्या बताया है? अगर हम अपने धन का रक्षण करना चाहते हैं तो उसको बांट देना चाहिए, सबसे अच्छा कार्य है। भागवतम में अन्यत्र भी बतलाया गया है, अलग अलग चीजों के शुद्धिकरण का वर्णन किया है कि कैसे शुद्धिकरण होता है, मन का शुद्धिकरण कैसे होता है, बतलाते हैं संतुष्टि के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है तो वो मन का शुद्धिकरण कर सकता है। और धन का शुद्धिकरण कैसे होता है? उसको भगवान की सेवा में लगाकर, अगर धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो बाकी का धन शुद्ध हो जाता है, अन्यथा पूरा धन अशुद्ध है। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि हमारा जो धन हमने अर्जित किया है ये अशुद्ध है, लेकिन अगर हम उसमें से थोड़ा सा धन भगवान की सेवा में लगाते हैं तो बाकी का धन हमारा शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको हमें बांट देना चाहिए, क्योंकि धन जो है ये मैन्योर जानते हैं, खाद के समान है। खाद मतलब जो हम लोग फर्टिलाइजर्स नहीं, दूसरे जो खाद बनाते हैं, तो जितना उसको फैला देते हैं उतना वो मदद करती है और उपजाऊ होने के लिए, लेकिन अगर उसको एक जगह पर रखते हैं तो क्या होता है? बदबू आने लगती है। इसलिए धन को रखना नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी यही बतलाया कि जितना भी धन आए मंदिर में उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, सुबह आना चाहिए धन, शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। वो शास्त्रों के अनुसार थोड़ा बहुत हमें भविष्य के लिए रखना है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना, बाकी हमें धन भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। आगे चाणक्य पंडित बताते हैं कि दरअसल जो कृपण व्यक्ति है वो सबसे बड़ा दाता है। सोचिए, कंजूस व्यक्ति ये सबसे बड़ा दाता है। कैसे इतना बड़ा दाता कैसे हो गया कंजूस व्यक्ति? तो बताते हैं, कृपणे न समो दाता न भूतो न भविष्यति। कृपण के समान जो दाता है न भूतो न भविष्यति, ना होगा ना है, पहले था ना होगा, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? वो बताते हैं, अस्पर्शनेन वित्तानि, वित्त को, धन को वो स्पर्श किए बिना सारा का सारा धन बांट देता है मृत्यु के समय, है ना? कितना सारा बांटता है, सारा जीवन वो बचा कर रखता है, संभाल कर रखता है, कृपण है कंजूस, एक एक चीज नहीं, एक एक भी रुपया खर्चा नहीं करता। जैसे कई बार हमने बतलाया ना एक बड़ा सुंदर उदाहरण कि कंजूस मतलब क्या है। एक बार एक व्यक्ति ने, व्यक्ति को लोगों ने कहा, आपके पास इतना धन है, आप सूखी रोटी खाते हो, घी लगा के खाया करो। तो उसने कहा ठीक है, बड़ा टिन लेकर आया घर में घी का और रख दिया उसको, लेकिन इतना कंजूस था तो गरम गरम जो फुलका होता था चपाती, वो बाहर से ही टिन पर लगा दिया करता था कि घी लग जाए उसमें, खत्म नहीं होना चाहिए अंदर का घी, और मुझे घी भी मिल जाना चाहिए। तो कृपण, तो जो कृपण है वो सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि मृत्यु हो जाती है, सारा धन दूसरे के पास चला जाता है, और एक साथ जाता है तो एक साथ अपना धन दूसरों को दे देता है। तो इससे बड़ा दाता और कौन होगा? कोई व्यक्ति अपना सारा धन एक साथ देता है क्या? कृपण दे देता है, सारी जिंदगी छूने नहीं देता, स्पर्श नहीं करने देता, लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है वो उसको बांट देता है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि धनवान कौन है और गरीब कौन है व्यक्ति, निर्धन कौन है, इसको जानना चाहिए। तो इसमें बताते हैं चाणक्य पंडित, सही भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विषातः। दरिद्र कौन है, जो कौन दरिद्र होता है, जिसकी तृष्णा यानी जिसके हृदय में इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, वो दरिद्र है, क्योंकि केवल इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। मनसि च परितुष्टो, और धनवान कौन है, जो मन से संतुष्ट है, वो धनवान व्यक्ति है। तो इसलिए वो कहते हैं को अर्थवान को दरिद्र, कौन धनवान है और कौन दरिद्र है या निर्धन है, इसका पता कैसे चलेगा, कौन जान सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत सारी तृष्णाएं हैं वो निर्धन व्यक्ति है, भागता रहेगा उन्हीं के पीछे। लेकिन जिसके मन में संतुष्टि है, जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया है, संतुष्टि कब आती है, जब मन भगवान में लगता है, तो ऐसा व्यक्ति ये धनवान कहलाया जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। रतेषु जायते सुरः सहस्रेषु जायते पंडितः। वो बताते हैं कि बहुत सारे लोगों में कोई एक व्यक्ति सुरः बनता है, सहस्र जायतु पंडिता, बहुत सारे लोगों में कोई एक पंडित बनता है, हजारों लोगों में। वक्ता दश सहस्रेशु, कुछ सौ लोगों में एक सुर होता है, हजारों में एक पंडित होता है, और वक्ता दश सहस्रेशु, वक्ता यानी बहुत अच्छा बोलने वाला, ये दश सहस्रेशु, हजारों हजारों लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सुंदर वक्ता होता है। और इसी तरह दाता भवती वानावा, तो ये सब हो सकते हैं कि थोड़े लोगों में सुर हो सकते हैं, हजारों लोगों में कोई पंडित हो सकता है, हजारों हजारों लोगों में से कोई एक वक्ता होता है, लेकिन दाता वो बहुत ही मुश्किल है। वो कहते हैं दाता भवती वानवा, होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि धन से बड़ी आसक्ति है। तो इसी चीज को नारद मुनि यहां पर समझा रहे हैं कि धन के कारण व्यक्ति इन सारे पापों में लगता है। तो देखिए कितना कष्ट करना पड़ता है, और कष्ट करने के बाद भी क्या मिलता है, पाप के फल। तो इस तरह से वो उनको उपदेश देने लगे, और आगे के उपदेश बड़े सुंदर हैं उनके। वो कहते हैं जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता भी सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वे चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। तो हम लोग भोग क्यों करते हैं, क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं, ये सोचते हैं कि हम कोई बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं, हम कोई धनवान व्यक्ति हैं, हम कोई मंत्री हैं, हम कोई दूसरे हैं, इस कारण से हम भोग करते हैं। लेकिन नारद मुनि यहां बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति पश्यन अपि न पश्यति, क्या नहीं देखता कि अरे जो भी व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो, जैसे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र के नेता हुए हैं, कहां गए वो, या तो उनका जो शरीर है वो मल हो गया, कीड़ों ने खा लिया, या फिर जलाकर भस्म कर दिया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उस पर गर्व कर सकता है व्यक्ति अपने जीवन में, किंतु चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद या तो कीड़े खाने वाले हैं, या मल में परिणत हो जाएगा, या राख बन जाएगा, अर्थात या तो उसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, या कीट पतंगों के लिए या चील और बाजों को खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो फिर ऐसे शरीर से कैसी आ सकती। देखिए भागवतम इतने सुंदर ज्ञान को देता है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े ध्यान से इनको पढ़े, इनको इन वचनों को, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे, तो कैसे कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भागवतम पढ़े और भक्ति नहीं करे। ये भागवतम के वचन है, कितना सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है। फिर आगे वो बताते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है, तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भोगने पड़ेंगे। तो हम लोग जब कार्य करते हैं तो उस समय उसके फल की ओर ध्यान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कभी लोगों को पूछा जाए तो कहते भगवान ने भगवद गीता में ऐसा बताया है, अरे भगवान ने कहा बताया है? तो बोले बताया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवान ने बताया। इसलिए हम कर्म करते हैं आगे का नहीं सोचते। लेकिन यहां पर नारद मुनि बता रहे कि ऐसे मूर्ख लोग जो आगे का नहीं सोचते, भगवान ने यह नहीं बताया कि आगे का सोचो मत, उन्होंने ये कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोत्सव कर्मणी। वो भूल जाते हैं, पहली लाइन याद रहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते, अरे मेरे लिए कर्म अर्पण करो, मुझे मुझसे आसक्ति बढ़ाओ, वो सब भी तो सुनना है, तो वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहां नारद मुनि बता रहे हैं कि उन्हें अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा और ऐसे पापी को नरक जाना होगा। हम लोग व्यर्थ ही निरीह पशुओं की हत्या करते हैं, वध करते हैं, क्या मिलता है? थोड़ा सा जिह्वा का स्वाद, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन उस स्वाद के लिए कितना बड़ा कर्म फल हम लोग अपने लिए जमा कर लेते हैं और फिर नरक जाना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को जो अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता, वो अपने आप को ये शरीर मानता है। तो अब नारद मुनि ये कहने लगे कि अच्छा ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है तो उसे ये प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न? यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है या स्वयं का, माता पिता का, नाना का, क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, खरीदने वाले स्वामी का, या उन पुत्रों का होता है जो उसे अग्नि में जला देते हैं? और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या यह उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं? आखिर इतने सारे दावेदारों में से असली दावेदार कौन है? देखिए कितना सुंदर, किसका शरीर है ये? हम लोग कहते हैं हमारा शरीर है। नारद मुनि ने सारा हमारा जो हमारी अभी तक की सोच थी उसको धाराशाही कर दिया। किसका शरीर है? हाँ, वो पहले पूछते हैं ये शरीर अन्नदाता का है, क्योंकि स्वाभाविक है जो खिला खिलाकर बड़ा कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, उसका होगा। ये शरीर अन्नदाता का है या स्वयं का है, हमारा है, या माता पिता का है? क्योंकि कहां से आया ये शरीर, किसने दिया शरीर, किसके शरीर के अंगों से, किसके शरीर से बना है ये शरीर? मां के शरीर में बना, पिता के वीर्य से बना, तो फिर माता पिता का हुआ शरीर। नहीं, अगर वो भी नहीं तो यह नाना का है। नाना का इसलिए लिखा गया है कि पहले ये प्रथा थी कि किसी के घर में केवल लड़की है, लड़का नहीं है, तो वो अपनी लड़की का पुत्री का विवाह केवल इसलिए करते थे, किसी दूसरे से, एक शर्त पर करते थे कि मैं तुम्हारा अपनी पुत्री से विवाह कर रहा हूं, लेकिन जो पहला पुत्र होगा उसको मुझे दे देना, वो मेरा पुत्र होगा। तो ऐसा पहले प्रथा होती थी, और जब वो पुत्री पुत्र को जन्म देती थी तो वो नाना को दे दिया जाता था, वो अपने पुत्र के समान उसको पालते थे, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं होता था, वंश चलाने वाला नहीं होता था, तो इस तरह से ये प्रथा थी। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि माता का है, माता पिता का है, या नाना का है, या फिर यह बलपूर्वक ले जाने वाले का है। समझिए किसी आपको कोई जबरदस्ती ले जा रहा है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब शरीर उसका है, या फिर किसी ने शरीर खरीदा है। जैसे पहले दास प्रथा हुआ करती थी तो उसमें बाजार हुआ करते थे, लोगों के बाजार, तो उसमें खरीदा बेचा जाता था। दरअसल ये अमेरिका में प्रथा शुरू हुई थी, ऐसे पहले प्रथा नहीं थी, लेकिन एक समय कोई एक व्यापारी आया और उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो उसने अपने एक नौकर को दे दिया, तो उससे प्रथा शुरू हो गई, एक बाजार शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे काफ़ी समय तक ये चला, फिर आगे चलकर कानून बने और उनको समाप्त किया गया। तो ऐसा होता था, लोग खरीद लिया करते थे और खरीदने के बाद वो गुलाम हो जाता था, दास भी नहीं, गुलाम शब्द उसके लिए बहुत उपयुक्त है। गुलाम मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं, उसका कोई कार्य, खाने को दिया तो खाना, नहीं दिया तो नहीं खाना है, भूखे मरना है सब। तो फिर ये शरीर उसका हो गया। देखिए कितने सुंदर प्रश्न है। अच्छा, अगर उसका नहीं है तो क्या ये उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि देते हैं? शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो पिता के शरीर को पुत्र अग्नि देता है, तो क्या ये अर्थ है कि वो अग्नि दे रहा है, उसके ऊपर उसका अधिकार है, तो ये शरीर उसका हो गया? अगर नहीं, कहते हैं कि नहीं, ये अग्नि में नहीं जलाते हैं हम लोग, तो हमारे जैसे कोई कहे कि हमारे समाज में भाई जलाया नहीं जाता है, इसको पशुओं के खाने के लिए दे दिया जाता है। तो अर्थात आपने जो जीवन भर शरीर का पोषण किया किसके लिए? कुत्तों के लिए, सही है ना? जीवन भर उसका पोषण किया, खिलाया पिलाया, साफ सुथरा रखा, उसको सब पालन किया, उसके लिए सारे कृत्य किए, किस लिए? अंत में वो शरीर कुत्ते खाएं। इतना बड़ा किया वो शरीर ताकि कुत्ते खाएं। तो क्या ये शरीर कुत्तों का है? आखिर इतने सारे दावेदारों में से असली दावेदार कौन है? इसका पता लगाने की बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं। तो कोई व्यक्ति ये सोचे मुझे क्या करना है, किसी का भी शरीर हो मुझे क्या लेना देना है, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा मजा करूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं, इसका पता करना चाहिए किसका शरीर है भाई आप लेकर घूम रहे हो, इतने सालों से उसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो, यही नहीं पता किसका शरीर है? अब आप लोग बताइए इतने सारे दावेदारों में से किसका शरीर है? कितना ऐसा प्रश्न अगर कोई हम लोगों से पूछे क्या जवाब देंगे? कितना सुंदर विवेचना की है, एक भी चीज गलत नहीं है, जो भी कहा वो सब सत्य है, पिता माता का भी है, जो खरीद लेता है उसका भी है, कुत्तों का भी है, अग्नि का भी है, सबका है। तो फिर बताइए हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि दूसरों को देने वाली संपत्ति को जीवन भर संभाल कर रखते हैं, मृत्यु के समय कष्ट के द्वारा उसको दे देते हैं, भाई ये ले जाओ तुम्हारी संपत्ति, फिर आपको क्या मिला अंत में? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। तो ऐसी मूर्खता हम लोग करते हैं। तो नारद मुनि इसको बड़ा सुंदर ये प्रश्न है, तो आप लोग बताइए कोई बताना चाहेंगे किसका शरीर है इतने सारे दावेदारों में से? प्रश्न पूछा है, आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है? नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी ये प्रश्न किया है? आप में से कई लोगों ने भागवतम पढ़ा होगा, ये स्कंद भी पढ़ा होगा, कृष्णा बुक हम सब ने पढ़ी है, ये अध्याय भी पढ़ा होगा। तो बताइए कि ये नारद मुनि का जो प्रश्न है इसका क्या उत्तर है, किसका शरीर है ये? अगर हम कहें हमारा है, किसी का नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं हमारा? इतने सारे दावेदार पहले ही बता दिए उन्होंने, तुम्हारा है तो कुत्तों को क्यों देते हो, तुम्हारा है तो अग्नि में क्यों डालते हो, तुम्हारा है तो ये माता पिता का क्या हुआ फिर जिन्होंने दिया उसे, तुम अपना कैसे कह सकते हो? तुमने कमाया था क्या, अपने आप बनाया था? इसके लिए मिट्टी, इसके लिए पानी, इसके लिए आकाश आप लाए थे क्या? तब फिर कहाँ है, किसका शरीर है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ढूंढिएगा, अगली बार आपको देंगे। वेल, नारद मुनि नहीं कहते हैं सब भगवान का है, क्योंकि शरीर भगवान का नहीं है, भगवान का संबंध आत्मा से है, शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर एक वेहिकल है जिसको इस संबंध को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवान केवल आत्मा से संबंध रखते, शरीर से उनको कोई लेना देना नहीं है, शारीरिक उपाधियों से शरीर से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। खैर आप लोग ढूंढिएगा इस प्रश्न का, बड़ा सुंदर प्रश्न है, भागवत में ही उसका उत्तर दिया है। प्रभु जी कह रहे हैं कि मटका बनता है, मटका फूट जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, तो इसी प्रकार से शरीर का क्या होता है? संपत्ति किसकी है फिर, मटका किसका है? अगर उसको बनाने वाले का कहें कुम्हार, तो वो माता पिता हैं, उन्होंने बड़े जतन से बनाया है। हाँ जी, प्रकृति का है, यस, प्रभु जी ने भागवतम पढ़ा है लगता है। नारद मुनि अगले श्लोक में ही उत्तर दे रहे हैं, हम वो पढ़ने जा रहे थे। नारद मुनि बताते हैं कि ये प्रकृति की संपत्ति, ना केवल प्रकृति की, वो कहते हैं कि ये सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, कोई एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है सब लोगों के लिए, क्योंकि जो जो उन्होंने कहा है वो सब सत्य है, कोई गलत नहीं कहा है। इसलिए वो आगे उत्तर देते हैं कि किस प्रकार ये जो शरीर है ये किसकी संपत्ति है। नास्तिक मूर्ख तथा धूर्त धन के मत के कारण वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाते, अतः उन्हें दरिद्र बनना ही सर्वोत्तम काजल है, जिसे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है, अतः वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी दुखमय स्थिति में रहें। उदाहरण देते हैं कि जिसके शरीर में कांटे चुभे हैं वे उनके चेहरों को देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है जिन्हें कांटे चुभ रहे हैं। नारद मुनि बताते हैं उपाय दे रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को इस अभिमान से दूर रहना चाहिए, और वो कहते हैं कि व्यक्ति को गरीब हो जाना चाहिए, दरिद्र रहना चाहिए। दरिद्र व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, दरिद्र व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। तो अब अगर ऐसा सोचें तो सारे अमीरों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। अमीर लोग बोले भाई हम क्या करें, नारद मुनि ने तो कह दिया सब दरिद्र हो जाओ। लोग भी कहते हैं ना दरिद्र नारायण, नारायण भी दरिद्र हैं। वैसे नारायण प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि अगर दरिद्र नारायण हैं तो जो धनी लोग हैं उनको धनी नारायण कहना चाहिए, फिर दोनों प्रकार के नारायण होने चाहिए। तो इस तरह से ये बड़ी विकट स्थिति में यहाँ पर डाल दिया है नारद मुनि ने, कि वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को दरिद्र होना चाहिए, और अगर दरिद्र रहे धनवान नहीं रहे तब वो बड़ी आसानी से अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति दरिद्र रहने से, नारद मुनि समझाते हैं, दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसके पास अपना कहने के लिए कोई संपत्ति ही नहीं होती है। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, वह सदैव भोजन आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता है, अतः देव कृपा से जो भी मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता है। इस तरह की अनिवार्य तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है। और साथ साथ वो कहते हैं कि दरिद्र व्यक्ति भूखा रहता है, इस कारण से धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, अतिरिक्त बल नहीं रहता, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, और फिर ऐसी अवस्था में संत पुरुष भी उसका संग कर सकते हैं। जैसे संत पुरुष साधु लोग हैं वो अमीर व्यक्तियों के जल्दी नहीं जाते हैं, गरीबों के ऐसे ही चले जाते हैं, तो ऐसा वर्णन है। तो आइए जो नारद मुनि की सारी शिक्षाएं हैं उनको सार के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो सारे श्लोक अभी हमने पढ़े इनको एक संक्षेप में इनका समझने का प्रयास करें। नारद मुनि समझा रहे हैं कि जब जीव के पास भौतिक ऐश्वर्य आता है तो फिर सबसे पहले वो इन चीजों में लगता है, किसमें, नशापान में, फिर मैथुन में, फिर द्यूत क्रीड़ा और फिर मांसाहार। श्रील प्रभुपाद ने इन चारों चीजों को करने से मना किया है क्योंकि नारद मुनि यहाँ पर बतला रहे हैं कि ये चारों चीजें क्या करती हैं, जब व्यक्ति इन चीजों में रत होता है तो वह ये भूल जाता है। क्या भूल जाता है? सबसे पहली चीज भूल जाता है कि ये भौतिक शरीर नाशवान है। जैसे नारद मुनि ने समझाया कि हम अपने आप को कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मान सकते हैं लेकिन अंत में क्या होना है, कोई कीड़ा बनेगा, कोई मल बनेगा और कोई क्या बनेगा, राख बनेगा, जल जाएगा। तो जब इन चीजों में व्यक्ति रत होता है तो ये भूल जाता है कि भौतिक शरीर ये नाशवान है, इसका अंत होने वाला है, और इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, नारकीय जीवन की ओर जाते हैं। नारद मुनि ने क्या समझाया था कि वो लोग सोचते हैं कि हम इंद्रिय भोग करते रहेंगे, कोई हमें आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, जीवन है कि नहीं है क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी शरीर हो, हम कार्य करते रहेंगे, भोग करते रहेंगे। तो इस तरह से वो नरक में जाते हैं, पशु हत्या करते हैं और फिर नरक में कई कई जन्मों तक उन्हें कई हजारों वर्षों तक कष्ट भोगने होते हैं। तो इस तरह नारकीय जीवन की ओर जाते हैं और साथ ही साथ जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते कि ये शरीर हमें क्यों मिला है, ये किस लिए मिला है, ये जीवन क्यों है, इसको हम लोग समझ नहीं पाते। तो अब जैसे नारद मुनि ने बताया कि व्यक्ति को निर्धन होना चाहिए, धनी नहीं होना चाहिए, दरिद्र होना चाहिए, तो कौन सी दरिद्रता की बात नारद मुनि कर रहे हैं, कौन सी निर्धनता की बात नारद मुनि कर रहे हैं, तो इसको कुंती महारानी समझाती हैं। तो आइए इस श्लोक को हम लोग दोहराएंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है, तो इसको हम लोग सब पाठ करेंगे। जन्मैश्वर्य श्रुतिर् श्रीभिः नैवहर्त्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् आप में से कोई दोहराएंगे? जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भे एधमान मद पुमा नैवाहत्यभिदातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्। माताजी जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभि एदमान मद पुमा नैवाहत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। कुंती महारानी कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो यहां पर कुंती महारानी समझा रही हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हमें अकिंचन बनना होता है, हमें निर्धन, जिस धन को हमने कई जन्मों से संचित करके रखा है, उस धन को त्यागना होता है। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी भौतिक कामना नहीं है, भौतिक आसक्ति नहीं है, भौतिक भोगों में उसका मन नहीं लगा है, ऐसा व्यक्ति अकिंचन कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति का वर्णन यहां कर रहे हैं, त्वाम अकिंचन गोचरम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये नारद मुनि की शिक्षाएं हैं और उसके बाद आगे की कथा होगी। आज अगर थोड़ा समय भी हो जाए, लेकिन आज समाप्त करेंगे इस लीला को। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्धन है, उसके लिए बड़े आसान हो जाता है, दो तरह से वो कार्य करता है, उसके लिए कार्य होता है। पहला कि क्योंकि निर्धन है तो उसका शरीर उसका क्षीण हो जाता है, कोई शक्ति नहीं रहती। और फिर ऐसे समय में, ऐसे अवस्था में वो अपना इंद्रिय संयम अपने आप कर पाता है, क्योंकि इंद्रियों में बल ही नहीं होता है। जब व्यक्ति का शरीर क्षीण हो जाए, इंद्रियों में बल नहीं हो, तब फिर कैसे उसकी इंद्रियां भोग की वस्तु की कामना करेंगी। जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तब फिर हमारा हमारा जो उदर है, हमारा जो पेट है, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा खा लेने के कारण, उस शक्ति के कारण हमारी बाकी इंद्रियां शक्तिशाली हो जाती हैं, फिर वो भोग की कामना करती हैं। लेकिन यह निर्धन व्यक्ति, इसका पूरा शरीर ही क्षीण है, खाने के लिए ही नहीं है, तो कैसे वो इंद्रिय भोग की कामना करेगा। दूसरी ओर जैसे नारद मुनि बतला रहे थे कि उससे वैसे ही स्वाभाविक तौर से तपस्या हो जाती है, और उस तपस्या के कारण मिथ्या अभिमान का नाश हो जाता है। एक निर्धन व्यक्ति के लिए क्या अभिमान रहता है उसके जीवन में, और फिर उसके द्वारा जब वो मिथ्या अभिमान नहीं रहता तो वो शुद्धता उसके जीवन में आती है। अब ये दोनों चीजें जो बतला रहे हैं, ये केवल एक धन की दृष्टि से हमने देखा, लेकिन अगर इस धन को हम वर्षों से, जन्मों से संचित अपने ऐश्वर्य से जोड़ें, क्या ऐश्वर्य है हमारा? षड ऐश्वर्य। जीव भी षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, पूर्णता में है। जीव के पास भी छह ऐश्वर्य हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। ये ऐश्वर्य को जीव छोड़ता नहीं है, धनवान मानता है अपने आप को इस धन के द्वारा। तो निर्धन अकिंचन व्यक्ति जो भौतिक भोगों को त्याग दे, भौतिक इच्छाओं को त्याग दे, कामना करे कि मैं ये भौतिक भोगों में आसक्त नहीं होना चाहता हूं, तो फिर उसका शरीर क्षीण हो जाता है। शरीर कौन सा शरीर? बाहरी दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन उसका जो भौतिक अस्तित्व है वो क्षीण होने लगता है। और क्यों होने लगता है? क्योंकि वो इंद्रिय संयम कर पाता है, और इस इंद्रिय संयम को वो अपनी इस अवस्था में बड़ी अच्छी तरह से करता है, और फिर इंद्रिय संयम का सही उद्देश्य के भी प्राप्ति करता है। दूसरी ओर निर्धन व्यक्ति जिसकी कोई तपस, जिसकी कोई भोगों की इच्छा नहीं है, अकिंचन है, भौतिक भोगों में नहीं लगा है, वो व्यक्ति तपस्या कर सकता है। तपस्या का अर्थ क्या है भौतिक दृष्टि से? कि भौतिक भोगों से दूर रहना, यही तो तपस्या है ना। तपस्या का अर्थ और क्या है? जैसे मंगल आरती में आना एक तपस्या है, ठीक है ना। तो कैसे तपस्या है? क्योंकि नींद सबको बड़ी प्रिय होती है, भोग होता है नींद से, बड़ा आनंद आता है, आंखें नहीं खुलती हैं, उठने की इच्छा नहीं करती है, लोग हिलाते भी हैं तो भी थोड़ा सा नहीं उठना है, तो उसको त्यागना ये तपस्या हो गई, अकिंचन। उस व्यक्ति ने त्याग दिया। जैसे अभी अगले हफ्ते में एकादशी आ रही है, तो हम जानते हैं कि आप सब बड़े नियम से एकादशी पर मंगल आरती में आते हैं, कभी चूकते नहीं हैं। और इस बार तो एकादशी बड़ी विशेष है, क्योंकि इस दिन उस सुबह में मंगल आरती के समय देवामृत प्रभु रहेंगे एकादशी पर, तो कम से कम आप लोग इस एकादशी पर तो आ जाइएगा मंगल आरती 4:30 के पहले। तो ये तपस्या हो गई भोगों को त्यागना, है ना। कलयुग के लिए यही तपस्या है। अगर आप केवल मंगल आरती में उठकर आए, भगवान के नाम का जप करें और भक्तों का संग, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बड़ी और कोई तपस्या कलयुग में नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने नियम बनाए हैं कि मंगल आरती में आना चाहिए। तो तपस्या हो जाती है, और तपस्या के द्वारा मिथ्या अहंकार का नाश होता है, और फिर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और इन दोनों अवस्थाओं में ये व्यक्ति एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसका वर्णन नारद मुनि ने किया, और वो है सत्संग। इन दोनों अवस्थाओं में वो सत्संग कर पाता है, भक्तों का संग कर पाता है। और ऐसा व्यक्ति, ये अकिंचन व्यक्ति, सत्संग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करता है। तो इस तरह से यहां पर ये दोनों जो वृक्षों के रूप में थे, तो इनको उपदेश दिया नारद मुनि ने। नारद मुनि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं साधु पुरुषों का, कि संत पुरुष 2400 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं रहता, तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकवादियों की संगति का प्रयास करते हैं, या भक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी या धनी हैं। तो फिर नारद मुनि ने सोचा कि अब इन दोनों का उद्धार करना चाहिए, ये दोनों इस समय मदिरा में मदिरा पिए हुए नशे में हैं। तो फिर उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया। नारद मुनि ने कहा कि इन दोनों युवकों को वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए। क्यों वृक्ष का मिलना चाहिए, और कोई शरीर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि वृक्ष के शरीर में इनकी ये इच्छा बड़ी पूरी हो जाएगी। जैसे ये खड़े हैं बिना वस्त्रों के, ऐसे ही बरसों तक खड़े रहें। तो आजकल के समाज में भी हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं फैशन का मतलब है कम कपड़े पहनना। जितना कोई कम कपड़े पहनता है उतना ज़्यादा फैशनेबल कहलाता है। आजकल लोग बड़े विचित्र विचित्र विचार कर रहे हैं। एक बार किसी ने बताया कि किसी ने न्यूज़पेपर का कपड़ा बनाया था, और वो उस शो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फैशन शो, हाँ। आपको बहुत पता है नहीं? माता जी आए हैं? नहीं, फिर ठीक है। तो फैशन शो में वो न्यूज़पेपर का कपड़ा पहनकर उसको कुछ फर्स्ट प्राइज दिया था। अब पता नहीं लोग कैसे पहनते हैं, कभी तेज हवा में पहनकर निकलना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि कम कपड़े पहनना ये बड़ा ही फैशन है। लेकिन ये देखिए यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए भगवान ने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था की है कि आपकी इच्छा है, आपको अंग प्रदर्शन करना है, कपड़े नहीं पहनने तकलीफ होती है पहनने में, तो आप वृक्ष बन जाइए, फिर वृक्ष बनकर खड़े रहिए, बारिश आए धूप आए कुछ भी हो कोई चिंता नहीं, बिना कपड़ों के खड़े रहिए। तो इसीलिए नारद मुनि ने कहा कि इन दोनों को वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी क्योंकि नारद मुनि हैं, वो ऋषि हैं, भक्त हैं, तो श्राप नहीं देने आए थे दरअसल, और इन्होंने ये श्राप कोई क्रोध में नहीं दिया था, ये उनका उद्धार करने के लिए दिया था। तो इसीलिए वो कहने लगे फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी, यही नहीं मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए ये भक्तों के गुण हैं, ये भक्तों के लक्षण हैं कि वो श्राप भी दे रहे हैं तो किस लिए? उद्धार के लिए, कोई क्रोध से नहीं, कोई द्वेष भावना से नहीं, केवल उद्धार करने के लिए। तो ऐसे में ये श्राप नारद मुनि ने दिया और फिर वे दोनों वृक्ष हुए, और वृक्ष होकर भी कहां पर हुए? नंद बाबा के आंगन में। एक आचार्य समझाते हैं कि एक भाषा में अंगना स्त्री को भी कहते हैं, तो क्योंकि वो अंगना में रत थे या अंगना में उनकी मति लगी हुई थी, इसलिए उनको आंगन में जन्म दे दिया, ऐसा वो बतलाते हैं। तो आंगन में आकर वो वृक्ष बने, तो अब इन्हीं वृक्षों को भगवान ने देखा, तो भगवान ने ये सारी स्मरण किया, और भगवान ने इस बात का भी स्मरण किया कि मेरी विशेष कृपा से, नारद मुनि यहां बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरी विशेष कृपा से ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे। तो जिस समय नारद मुनि ने कहा, कृष्ण आए नहीं थे, लेकिन सत्यम विधातुम निज वृत्त्य भाषितम, अपने भक्त की बातों को, अपने भक्त के कहे हुए वचनों को पूरा करने के लिए कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे इनका उद्धार करना चाहिए। तो अब माँ यशोदा चली गई और कृष्ण धीरे धीरे उखल में बंधे हुए ही चलने लगे। अब जब वो चले तो उखल भी पीछे पीछे चला, तो भक्त है भगवान का, जहां भगवान वहां वो भी जाएगा, तो उखल भी पीछे पीछे चल रहा है। अब भगवान चल रहे हैं, उद्धार करना चाहते हैं ऐसे लोगों का जो अकिंचन हो गए हैं, सारे धन से उनको नारद मुनि ने उनका उद्धार कर दिया, धन नहीं रहा। दरअसल कभी कभी इसीलिए भक्त ऐसा सोचते हैं कि हमें भक्त नहीं बनना चाहिए, लोग ऐसा सोचते हैं, है ना, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूं क्या करता हूं बताइए कैसी कृपा है, विशेष कृपा, वो भी विशेष कृपा करता हूं, हरिष्यति तद्धनम, उसका धन ही हरि हरण कर लेते हैं ये हरि। तो लोग बोलते हैं अच्छा है, आप दूर ही रहिए, दूर से प्रणाम करते हैं आपको, पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना आप हमारे पास आइए ना हम आपके पास आएंगे, क्योंकि हमें हमारा धन बड़ा प्रिय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ये कृष्ण के पास गए और उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरी एक बहुत तीव्र इच्छा है, आपको इसको पूरा ही करना होगा। तो कृष्ण ने कहा, अरे युधिष्ठिर महाराज, आप ऐसा कहेंगे, आप तो जो बोलिए वो पूरा करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत विशाल राज्य, किसी के पास नहीं, और बहुत ज्यादा धन चाहिए, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होना चाहिए मुझे। तो कृष्ण पूछ, अरे भाई युधिष्ठिर महाराज, क्या हो गया आपको? मैं तो सोचता था बहुत बड़े भक्त हो, ये कैसी कामना? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे बहुत बहुत धन चाहिए, मेरा यश फैलना चाहिए, और मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो कृष्ण ने कहा, मैं पूरी तो कर सकता हूं, लेकिन कुछ कारण तो बताओ, ऐसी क्यों इच्छा कर रहे हो? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया हूं ये इच्छा सुनकर, वो भी आपके मुख से। तो उन्होंने कहा कि लोगों में ये धारणा है, ये भ्रांति है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास धन नहीं होता है, इसीलिए मुझे धन चाहिए ताकि सब लोगों को सारे जगत में यह पता चल जाए, तीनों लोकों में पता चल जाए कि भगवान के भक्तों के पास धन भी हो सकता है, ऐश्वर्य भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, अगर वो उसे भगवान की सेवा में लगाए। तो इसलिए मुझे धन चाहिए। तो देखिए, अगर कामना करनी है धन की तो किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ये नहीं चाहते थे कि कोई ये कहे कि भगवान के भक्त दरिद्र होते हैं, जैसे यहां नारद मुनि ने कहा, तो इसको देखकर कोई कह सकता भाई हम तो दूर से ठीक हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, अगर आपके पास धन है तो उसको भगवान की सेवा में लगाइए, तो ये आपके धन का शुद्धिकरण ही नहीं, ये आपके जीवन की पूर्णता है। जो कुछ है केवल धन नहीं, वो कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे, मेरा घर मेरा धन छोड़कर बाकी सब आपका है। तो इस तरह से भगवान चलने लगे धीरे धीरे, घुटनों के बल पर वो घसीटते हुए जा रहे हैं, उखल भी पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके रस्सी बंधी हुई है, किसी ने खोला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, सब लोगों ने देखा लेकिन कोई खोल नहीं सकते हैं, यशोदा ने बांधा है। तो अब बंधे हुए स्वयं बंधन में हैं लेकिन उद्धार करने जा रहे हैं, ये भगवान की विशेषता है। कोई बंधा हुआ व्यक्ति किसी का उद्धार कर सकता है, किसी को मुक्त कर सकता है? कृष्ण कर सकते हैं। तो कृष्ण बंधे हुए हैं, कृष्ण सारे देवी देवता देख रहे हैं, पहली बार उन्होंने देखा है कि वो परब्रह्म बंध गए हैं, इसीलिए हम लोग गाते हैं ना राधा धाम। दरअसल ये जो लीला है इसमें राधा दामोदर नहीं है, ये यशोदा दामोदर है। राधा दामोदर लीला अलग हुई थी, जिसके लिए हम लोग उनको राधा दामोदर कहते हैं, वो भी एक बार राधा रानी ने बांध दिया था उनको। तो ये यशोदा दामोदर की लीला है, खैर दामोदर तो है। तो भगवान चल रहे हैं, वृक्षों की तरफ जा रहे हैं, और फिर पास में आकर वर्णन किया गया है भागवत में कि वो उस वृक्ष के अंतः में प्रवेश कर गए। अंतः में मतलब आचार्य समझाते हैं कि वो वृक्षों के हृदय में प्रवेश कर गए, अर्थात जीव का उद्धार तब तक नहीं होता जब तक भगवान अंतः में प्रवेश नहीं करते। इस लीला से वो इसको समझाते हैं कि जब भगवान अंतः में हृदय में प्रवेश करते हैं, जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान उठकर आए और वो स्तन काम में हुए, याद है आप लोगों को कल चर्चा हुई थी, स्तन काम में हुए अर्थात वो यशोदा माता के स्तन का पान करना चाहते थे, लेकिन भक्त की दृष्टि से क्या था ये, कोई बताएंगे? हमने ये बताया था कि भगवान क्या चाहते हैं, याद है किसी को? भूल गए सब? हृदय का, भक्त के हृदय का रस पीना चाहते हैं भगवान। तो इसी तरह यहां भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं तब उद्धार होता है, जब तक हृदय में भगवान नहीं आते, अंतः में नहीं आते, अंतर बही न, यदि कृष्ण नहीं है हरि, तो फिर तपसा ततकिम, फिर तपस्या करने का लाभ क्या है? कृष्ण होने चाहिए हमारा उद्देश्य, तपस्या का कृष्ण होने चाहिए। तो अब वो अंतः में प्रवेश कर गए कृष्ण, और उखल जो था वो अटक गया पीछे। तो आचार्य समझाते हैं, दरअसल एक ऐसे ही वो कहते हैं कि दरअसल कृष्ण ने उद्धार नहीं किया, कृष्ण तो चले गए थे, अंतः में प्रवेश किया, निकल गए बाहर, जैसे दो वृक्ष थे ऐसे दो वृक्ष थे, तो कृष्ण बीच में से गए, वो तो चले गए बाहर, उन्होंने कोई उद्धार नहीं किया। उद्धार किसने किया? उखल ने किया, क्योंकि स्पर्श उखल का हुआ, भगवान अटक गए, भगवान ने जरा सा हल्का सा झटका दिया और दोनों विशाल वृक्ष धाड़ 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 आवाज करके साहब नीचे गिर गए। तो उखल ने कैसे कर दिया उद्धार? तो आचार्य समझाते हैं, पहला कारण, उखल भगवान के पीछे पीछे चल रहा था। तो भगवान के पीछे कौन चलते हैं? भगवान का अनुगमन कौन करते हैं? भगवान के अनुगामी अर्थात भगवान के भक्त। और भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है कि वो उद्धार कर सकते हैं। जो भगवान के पीछे पीछे चलेगा वो कैसे नहीं किसी का उद्धार करेगा? दूसरा कारण, ये जो उखल था ये बंधा हुआ था, किससे बंधा था? गुण से। रज्जु या रस्सी, इसको गुण भी कहते हैं। इसलिए तीन गुणों से अभी हम बंधे हैं, लेकिन अगर कृष्ण गुण कृष्ण की रस्सी से बंध जाएं तो हम मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं। जीव को हमेशा बद्ध अवस्था में रहना है, या तो वो तीन गुणों की बद्ध अवस्था में रहता है, बंधा रहता है, या कृष्ण के गुण से बंधा रहता है। तो चॉइस है हमारे पास, चुनाव करना है, तीन गुणों में बंधे रहना है या कृष्ण के गुण में। गुण यानी रस्सी। तो ये जो उखल था ये कृष्ण गुण में बंधा था, और जो व्यक्ति कृष्ण गुण में, जो जीव कृष्ण गुण में बंधा है वो मुक्त जीव है, और ऐसा जीव दूसरों को मुक्त कर सकता है। ये इस लीला से पता चलता है। उखल ने क्यों मुक्त किया? क्योंकि गुण से बंधा था, कृष्ण के गुणों से बंधा था, कृष्ण से आसक्ति थी। कृष्ण के गुणों से बंधे होने का अर्थ कृष्ण से आसक्ति। तो फिर इस उखल के द्वारा ये वृक्षों का उद्धार हो गया, ये वृक्ष गिर पड़े, और फिर उन वृक्षों में से दो बड़े ही सुंदर देवता, हमने पहले ही वर्णन किया, बहुत सुंदर थे ये, तो दोनों बड़े सुंदर दिव्य पुरुष निकले और वो प्रार्थनाएं करने लगे। इनकी प्रार्थनाएं भी बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं, कि जो प्रार्थनाएं उन्होंने कृष्ण के प्रति की। यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे वहीं पर दोनों वृक्षों में से दो महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। तो देखिए यहां पर कितना सुंदर, वो वृक्ष गिरे हुए हैं, दोनों कितने विशाल वृक्ष हैं, बहुत जोर से आवाज आई थी, सारे ब्रज में हंगामा हो गया, और सब लोग जहां भी थे, जिस तरफ थे, कोई खेत में थे, कोई गायें चरा रहे थे, जहां भी थे सब भाग कर आ गए कि क्या हुआ। और दूर से ही देखा उन्होंने, क्योंकि इतने ऊंचे वृक्ष थे। आप सोचिए 100 वर्ष देवताओं के मतलब 36,000 वर्ष, तो इतने ऊंचे वृक्ष थे कि दूर से ही दिखाई देते थे। हमारे मंदिर के सामने भी एक ऊंचा वृक्ष है ना, होता ही जा रहा है लंबा, तो बहुत ऊंचे थे, दूर से दिखते थे। तो अब लोगों ने देखा कि वो वृक्ष दिख नहीं रहे हैं, और इतने बड़े वृक्ष, कोई हवा नहीं, कोई आंधी तूफान नहीं, कैसे गिर गए। तो सब भागे भागे आ रहे थे नंद बाबा के आंगन में। तो उतने में ये लीला हुई जब ये दो पुरुष अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिं त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। वो कहते हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है, आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप पास रहकर भी दूर हैं और भौतिक सृष्टि से परे हैं। भगवान का वर्णन वो कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रार्थनाओं में भगवान के गुणों का वो वर्णन करते हैं। आज इस समय इतना समय नहीं है कि हम उनकी प्रार्थनाओं को, लेकिन कभी चर्चा करनी चाहिए इन प्रार्थनाओं पे, बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। थोड़ा सा हम केवल पढ़ते हैं, चर्चा नहीं करेंगे। आप हर वस्तु के नियंता हैं, आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार और इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु हैं। आप काल, तात्कालिक कारण और तीनों गुणों वाली भौतिक प्रकृति हैं। अर्थात यहां बताया जा रहा है कि सब कुछ आप ही हैं, और आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं। आप जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने अतः इस भौतिक जगत में तीनों गुणों से बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। आपको समझना कठिन है क्योंकि आप इन सब से परे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, भगवान है तो दिखाओ, कैसे हैं भगवान, क्या है। अरे कैसे समझोगे, तीन गुणों से बंधे हुए हो, कृष्ण गुण से अभी तक बंधे नहीं, फिर कैसे कृष्ण को कोई जान सकता है। तो वही यहां पर वो वर्णन कर रहे हैं, और फिर भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं कि आप अलग अलग शरीरों में प्रकट होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि, और बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं, इसलिए आपके शरीर भौतिक तत्व से नहीं बने हैं। तो इस तरह से वो बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। फिर वो कहते हैं, उनको नमस्कार करते हैं भगवान को, बड़ा सुंदर वर्णन है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हैं, यदु वंश के प्रसिद्ध वंशज हैं, और हे वसुदेव पुत्र आप परम शांत हैं, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक इच्छा प्रकट की, एक वर मांगा भगवान से कि आप हमें एक वरदान दीजिए। और क्या वर मांगा? ये वर हम सबको मांगना चाहिए, ये हमारे जीवन की पूर्णता होगी अगर हम ये वर भगवान से मांगे और भगवान हमें ये वर दे दें। तो आइए इसको हम लोग इसका गान करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। आप में से कोई एक बोलना चाहेंगे? बड़ा सुंदर श्लोक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो नः। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। माताजी, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो नः। शिरस्तां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु। ये उनकी अंतिम प्रार्थनाएं हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे थे। ये अंतिम श्लोक या अंतिम प्रार्थना उन्होंने भगवान से की। पहले गुणगान किया भगवान का, वर्णन किया भगवान का कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, और फिर अंत में उन्होंने एक प्रार्थना की कि हे भगवान, हे सबसे पवित्र, हे सबसे मंगल, सबका मंगल करने वाले, हमारे ऊपर एक कृपा कीजिए, हमें ये वरदान दीजिए। तो देखिए कितना सुंदर वरदान उन्होंने मांगा है। पहला वो कहते हैं वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है, हमारी जो जिह्वा है, वो सदैव आपके गुणानुकथने, आपके गुणों का वर्णन करती रहे, ये वरदान हमें दीजिए। अर्थात हमारी वाणी से कभी भी किसी की निंदा नहीं हो, कभी भी कोई प्रजल्प नहीं हो, कभी भी कोई भौतिक वाक्य नहीं निकले। दरअसल ये भक्तों के लिए बड़ी आवश्यक चीज है। थोड़ा समय और हो जाएगा, ठीक है ना? कोई अभी केवल हाँ, आप लोग भगवान का नाम लेने में बड़ा कतराते हैं, जब भी अवसर मिले जोर से हरि बोल बोलना चाहिए। तो ये भक्तों के लिए बड़ा आवश्यक है कि अपनी वाणी को सबसे पहले वो वश में लाएं। वाणी, इसीलिए वो कह रहे वाणी गुणानुकथने, सबसे पहले रूप गोस्वामी भी यही बताते हैं, वाचो वेगम, सबसे पहला वेग कौन सा आपको वश में करना है, वाचो वेगम। ऐसे सभी आचार्यों ने, संतों ने, तुकाराम जी वर्णन करते हैं अपने अभंग में, बड़ा सुंदर वर्णन है कि अगर मेरी जिह्वा किसी की निंदा में लगी है तो मुझे मूक रहना ठीक है, यानी मैं मूक क्या बोलते हैं, हाँ गूंगा गूंगा रहूं वो ठीक है, अगर मेरी जिह्वा से किसी की निंदा निकलती है तो। ये स्वयं तुकाराम जी अपने अभंग में वर्णन, हमें अभंग वो पूरा याद नहीं, किसी को याद है, कुछ तो है ऐसे, ध्यान नहीं है हमें, बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इसीलिए ऐसे अगर हमारे मुख से किसी की निंदा निकल रही है तो तुकाराम जी कहते हैं उससे अच्छा तो गूंगा रहना, बोलना नहीं, क्योंकि जिह्वा का, जिह्वा की पूर्णता है गुणानुकथने, भगवान के गुणों का वर्णन करना। श्रवणो कथायाम, श्रवण कानों की क्या पूर्णता है, फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि ठीक है हम जिह्वा से तो आपका केवल गुणों का वर्णन करते रहें, इतना ही नहीं केवल क्या सुने, कृष्ण कथा, कथायाम श्रवणो कथायाम, आपकी कथा को केवल हम सुनते रहें। ये देखिए ये वरदान भगवान से मांगना चाहिए। बस हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से, कोई भौतिक ऐश्वर्य मांगते हैं, कोई बीमारियों से दूर जाने के लिए मांगते हैं, कोई कुछ और कार्यों से, लेकिन क्या मांगना चाहिए, श्रवणो कथाया, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए। ये वरदान कौन मांग रहे हैं, आप ये स्मरण रखिए कि ये वही लोग हैं जो नारद मुनि के सामने निर्वस्त्र खड़े थे, अहंकार में खड़े थे, मदमस्त होकर खड़े थे, देखते हैं क्या करता है ये, और यही आज क्या कह रहे हैं, श्रवणो कथायाम, कि हमें कृपया कीजिए हमारे ऊपर। कैसे हुआ ये, एक शुद्ध भक्त के संग से, नारद मुनि की कृपा से। तो इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मन, हस्तौ च कर्मसु, हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो अन्य इंद्रियां हैं वो किसमें लगे, आपके कार्यों में, आपकी सेवा में। जैसे भगवान की कई सेवाएं होती हैं, मंदिर में सेवाएं हैं, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, श्रृंगार करना, कितनी सारी सेवाएं हैं, ग्रंथ वितरण करना, प्रचार करना, इसके द्वारा हम अपने सारे शरीर को, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हस्तौ च कर्मसु मन तव पाद योन स्मर्त्याम, और मन को आपके चरण कमलों के स्मरण में लगाऊं। देखिए कितना अच्छा, ये हमें वरदान मांगना चाहिए भगवान, इस प्रार्थना को हम सबको याद करना चाहिए, और जब भी भगवान के दर्शन करें तो ये प्रार्थना दोहरानी चाहिए। दरअसल हम लोग अपनी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, महाजनो ये न गतः सपंथा, जो महाजन हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं और जो भागवतम में जिनका वर्णन है वो सारे महाजन हैं। तो महाजनो ये न गतः सपंथा, जो भागवत में प्रार्थनाएं हैं उनको दोहराना चाहिए, तो इसको याद करना चाहिए, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोन स्मर्त्याम, तो आपके चरण कमलों का स्मरण होता रहे। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और मेरा सिर सदैव आपके सामने ही झुके, और क्यों झुके, क्योंकि आप इस सारे जगत को झुकाने वाले हैं, आप इस सारे जगत को चलाने वाले हैं, इस जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, इसलिए आपके सामने मेरा सिर झुके। और फिर अंत में बोलते हैं, ये बड़ा सुंदर चीज है, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तुना भवत्तनु नाम, मेरी दृष्टि का क्या पूर्णता है, मेरे सुनने की पूर्णता हो गई, बोलने की पूर्णता हो गई, मेरे मन की पूर्णता हो गई, मेरी सारी इंद्रियों की पूर्णता हो गई, लेकिन दृष्टि देखूं कहां, क्योंकि ये दृष्टि ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से काम हृदय में प्रवेश करता है। बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने देखा कि ये आंखें अभी भी तंग कर रही हैं, सब कुछ छोड़ दिया फिर भी ये आंखें काम वासना की ओर जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें ही फोड़ ली। ऑफ कोर्स हमें ऐसा नहीं करना है, हम वो कर भी नहीं सकते हैं, करना है नहीं कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहां पर वो बता रहे हैं, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवन तनुनाम। हमारी जो दृष्टि है वो कहां पर लगे, ऐसे व्यक्तियों में लगे जो तनुनाम भवत तनुनाम आपसे अभिन्न है। तनुनाम यानी आपके ही समान है, और वो कौन है, सताम। सताम अर्थात आपके भक्त वैष्णव। तो कहते हैं कि हमारी दृष्टि की पूर्णतांत में कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि सदैव वैष्णवों के दर्शन में लगे, हम सदैव उनका दर्शन कर सकें, क्योंकि वो आपसे अभिन्न हैं। तो ये हमारी प्रार्थना है, कृपया करके हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम सदैव इन कार्यों में लगे रहें। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है, एक बार और इसको दोहराएंगे क्योंकि अब आपको अर्थ समझ में आया है तो और रस आएगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। तो इस प्रार्थना को आप सब याद कीजिए और जब भी भगवान के समक्ष आए तो ऐसी ही प्रार्थना कीजिए जिससे हमारे भौतिक कलमश दूर हो जाएगा, नहीं तो हम कुछ और प्रार्थना करेंगे भौतिक कलमश बढ़ जाएगा, आसक्ति बढ़ेगी। इसीलिए ऐसी प्रार्थनाओं को हमें भगवान के सामने दोहराना चाहिए। तो इस लीला का सार ये है कि हम सादा जीवन और उच्च विचार ऐसा कार्य करें, सादा जीवन जिए और अपने विचारों को ऊंचा रखें। ऊंचा मतलब अपने विचारों को भगवान में लगाएं, अपने आप को इस भौतिक कलमश से जिसमें हम गिरे हुए हैं ऊंचा उठाने का प्रयास करें और इसके द्वारा भगवान की भक्ति में लगें। तब ये जो अहंकार हमारे हृदय में है, अभिमान हमारे हृदय में है, फिर वो चाहे ऐश्वर्य से हो, जन्म से हो, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एद मानव मद अपमान, तो ये जो मद है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भक्तों का दर्शन करते रहेंगे, अपनी जिह्वा को भगवान की गुणानुकीर्तन में लगाएंगे, अपने कानों को भगवान के श्रवण में लगाएंगे, अपने हाथों को अपनी अन्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, मन को भगवान के चरण के स्मरण में लगाएंगे, तो इस तरह से हम लोग सदैव भगवान के भगवान का संग कर सकेंगे और अपने आप को शुद्ध रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैसे तो ये लीला बहुत बड़ी है, कल भी बहुत संक्षेप में लीला कही कि किस तरह, उसमें बहुत अन्य भी बहुत सारे वर्णन हैं, छोटी छोटी बातों पर कितना विस्तार आचार्यों ने किया है। तो हो सका तो दामोदर महीने में दीपावली के अवसर पर 3 दिन तक ये कथा करेंगे ताकि इसका विस्तार से, और अभी तो जितना बताया उसको छोड़कर फिर और कथा करेंगे। तो आप लोगों के कोई प्रश्न कोई टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न का चिन्ह कृष्ण में भी होता है या केवल विष्णु या नारायण में भी? श्री वत्स का चिन्ह भगवान में होता है क्योंकि ये लक्ष्मी देवी का स्थान है, ये लक्ष्मी देवी का चिन्ह माना जाता है। और जब व्यक्ति को सारूप्य मुक्ति मिलती है तो उसको बाकी सारा रूप भगवान के समान मिलता है, लेकिन ये श्री वत्स का चिन्ह नहीं मिलता। और कौस्तुभ मणि, ये दो भगवान को जीव से अलग कर देते हैं, उस जीव से जिसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है, तो इसलिए उसमें भी होता। और कोई प्रश्न? कि ये भौतिक प्रकृति भी भगवान की है और ये शरीर भौतिक प्रकृति से बना है, तो उस दृष्टि से शरीर भगवान का होना चाहिए, ये भक्त समझते हैं, ये भक्तों का मानना है। और वैसे तो हर चीज कृष्ण है, शास्त्र बतलाते हैं कि कृष्ण से अलग है ही क्या, किस चीज को आप कृष्ण से अलग करेंगे, जड़ प्रकृति भी कृष्ण है। तो इसीलिए वो शास्त्रों की दृष्टि है या वो ऊंचा स्तर है जहां पर हम ये मानते हैं कि सब कुछ कृष्ण है। लेकिन इस जगत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भौतिक तत्वों से बना शरीर भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, आकाश आकाश में, जल जल में चला जाता है। इस तरह से जो परिवर्तन जिस भौतिक प्रकृति से हुआ था वो परिवर्तन पुनः उसी में मिल जाता है। इसीलिए सबकी संपत्ति बताई जाती है, कॉमन प्रॉपर्टी। कुछ एक अलग दृष्टि से देखें तो ये भगवान की शक्ति वो तो है ही, क्योंकि भगवान से अभिन्न तो कुछ है ही नहीं। हम जिसको भगवान नहीं भी मानते वो भी भगवान है, तो इसलिए वो अलग दृष्टि है। लेकिन सामान्य तौर पर ये बतलाया जाता है, ठीक है। ये ऐसा बताया कि तपस्या से अभिमान दूर होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी तपस्या करते तो अभिमान आ जाता है, तो ये कैसे है? तपस्या से अभिमान नहीं आता है, गलत ढंग से की हुई तपस्या से अभिमान आता है। अगर कोई सही ढंग की तपस्या कर रहा है, भगवान की भक्ति के लिए तपस्या कर रहा है, तो उसे कभी अभिमान नहीं आएगा, चाहे कितनी ही तपस्या क्यों ना कर ले। माधवेंद्रपुरी वो इतनी तपस्या करते थे कि अगर कुछ मिला खाने को तो खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। इतनी बड़ी तपस्या कोई कर सकते हैं कि अगर मिल गया तो खाए, नहीं तो कई दिनों तक भूखे हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। तो इस तरह से गलत ढंग से जब हम तपस्या करते, अर्थात हमारी तपस्या का उद्देश्य जब कुछ और हो जाता है, तपस्या करते करते भक्ति करते करते, तब फिर हमारे अंदर अभिमान आता है। लेकिन अगर तपस्या सही ढंग से की जाती है, सही उद्देश्य के लिए की जाती है, तो ये अभिमान का नाश करती है। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी हैं, उनको देखिए, उनका अभिमान का नाश होता है जैसे जैसे वो बढ़ते हैं। दरअसल भक्ति में आगे बढ़ने का ये प्रमाण है कि वो कितना नम्र हो रहा है, कितना उसका अभिमान का नाश हुआ, ये भक्ति का मापदंड है। तो इसलिए अगर सही दृष्टि की तपस्या है तो वो कभी भी अभिमान नहीं लाती है, क्योंकि तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या और अभिमान ये विरोधी शब्द है। तपस्या का क्या अर्थ है? तपस्या का अर्थ है अपने अभिमान को त्यागना, भौतिक भोगों की इच्छा को त्यागना, मतलब अभिमान को त्यागना। तो तपस्या और अभिमान ये दो विरोधी शब्द है। जिसको अभिमान है वो तपस्या क्यों करेगा? जैसे यहां पर धनवान व्यक्तियों के बारे में बताया, वो सोचे मुझे क्या जरूरत है सुबह उठने की, इतना धन है मेरे पास, मैं आराम से सोऊंगा, क्यों तपस्या करूं? तो ये विरोधी शब्द हैं, अभिमान और तपस्या कभी एक साथ नहीं होते। लेकिन गलत ढंग से की हुई तपस्या ये अभिमान लाती है। इसलिए अगर हमें तपस्या के द्वारा अभिमान बढ़ रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तपस्या में कहीं गलती है, फिर तपस्या की चेकिंग करनी चाहिए और उसका विश्लेषण करके जो सही ढंग की तपस्या है वरिष्ठों से पूछकर उनके मार्गनिर्देशन में हमें वो तपस्या करनी चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न? और वैसे देखा जाए, अगर आप पुराने की बात करें तो वो आध्यात्मिक जगत है, वो शाश्वत है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका अभी शुरुआत है और उसका अब अंत हुआ, आज भी है नंद भवन, तो आज भी है, लीलाएं तो आज भी चल रही हैं, केवल हम देख नहीं पा रहे, अप्रकट हो गया है। तो प्रकट अप्रकट हो सकता है, लेकिन वो तो शाश्वत है। तो 36,000 क्या, वो तो काफी समय से, कभी उसके कोई बिगिनिंग नहीं है, आदि नहीं है, ठीक है। तो वैसे हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए कि अगले शुक्रवार शनिवार को ये कार्यक्रम नहीं होगा, तो क्यों प्रसन्नता हो रही है? क्योंकि इससे भी बहुत कहीं ऊंचे स्तर का रस आप लोगों को मिलने वाला है, कृष्ण कथा होगी। तो इसीलिए आप लोगों को पहले भी बताया है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 24 तारीख से ये कथा प्रारंभ होगी, 24 को सुबह, 24 को शाम, 25 की सुबह और शाम, 26 को सुबह और दोपहर, और हो सका तो 27 की सुबह भी, तो कृष्ण कथा का आस्वादन होगा। तो ये दो इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में फिर ये नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर से शुक्रवार और शनिवार को, जो अंतिम शुक्रवार और शनिवार होगा, क्योंकि उसके बाद जन्माष्टमी आ जाएगी, तो 31 तारीख और 1 तारीख को जो शुक्रवार और शनिवार है, उस दिन प्रयास करेंगे एक दो तीन असुरों को मारने के लिए। तो फिर वो अंतिम होगा और उसके बाद फिर अगली जन्माष्टमी को या फिर कभी उसको जारी रखेंगे। ठीक है, लीला हमने शुरुआत में बताया था कि ये ऐश्वर्य से उत्पन्न अहंकार को प्रकट करती है, जैसे इन दोनों को हो गया था। तो अगर हम लोग अपना सादा जीवन रखेंगे तो ये अहंकार नहीं आएगा। और उच्च विचार का अर्थ भगवान से, उच्च विचार मतलब सादी दृष्टि से उच्च विचार नहीं, सादा जीवन, अपने आप को सरल रखेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, और उच्च विचार रखेंगे तो हम लोग भगवान की भक्ति में लग सकेंगे। इसीलिए दामोदर लीला सादा जीवन और उच्च विचार के ये सार है कि हमें वो अभिमान नहीं आए, अहंकार नहीं आए, इस कारण से हम सरल जीवन जिए। क्योंकि जहां भी सरल जीवन नहीं होता है वहां अहंकार स्वाभाविक तौर से आ जाता है, जैसे कि इन दोनों को आया था। तो इसी कारण से सादा जीवन, वैसे दामोदर लीला का उद्देश्य कल हमने बतलाया था, भागवत में हम पढ़ रहे थे कि कृष्ण ने ये लीला क्यों की। सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं, इसको दिखलाने के लिए। लेकिन अगर नलकुंवर और मणिग्रीव उद्धार की दृष्टि से देखें तो सादा जीवन हमें जीना चाहिए, भक्ति मार्ग। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको ये अच्छा लगा होगा, और अगले से अगले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।